आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। बड़ी खबर में फेडरल विपक्ष नेता सुजन ली ने लिबरल और नेशनल पार्टियों के पुनः गठबंधन के बाद अपनी विपक्षी फ्रंट बेंच और शैडो कैबिनेट की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन की फ्रंट बेंच में वरिष्ठ लिबरल सांसद टेड ओब्रायन को कोष प्रवक्ता, जेम्स पैटरसन को वित्त प्रवक्ता और माइकेला कैश को विदेश मामलों की प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेशनल पार्टी की सांसद ब्रिजिट मैकेंजी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो पर बनी रहेंगी, जबकि डिप्टी नेशनल्स नेता केविन होगन ट्रेड पोर्टफोलियो संभालते रहेंगे। लिबरल सांसद जेन ह्यूम को शैडो कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। पूर्व नेशनल पार्टी नेता बानबी जॉयस और माइकल मैकॉर्मिक को भी फ्रंट बेंच में जगह नहीं मिली है। वहीं कई अर्थशास्त्रियों की वृद्धि की आशंकाओं के विपरीत महंगाई दर अब भी स्थिर बनी हुई है। अप्रैल में समाप्त वर्ष के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.4% पर बना रहा। अंडों की कीमतों में तेज वृद्धि से महंगाई पर दबाव पड़ा, लेकिन बिजली की लागत में गिरावट ने इसे संतुलित किया। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा कि यह अच्छी खबर है। उनके अनुसार ये दिखाता है कि महंगाई को लेकर जो प्रयास किए गए हैं, जो प्रगति की गई है, वह महत्वपूर्ण और स्थायी है। वहीं दूसरी ओर नए फेडरल पर्यावरण मंत्री मरे वॉट ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्थित विवादास्पद नॉर्थ वेस्ट शेल्फ परियोजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है, जिसे फॉसिल फ्यूल कंपनी वुडसाइड संचालित करती है। वर्षों की देरी के बाद इस गैस परियोजना को 2030 से बढ़ाकर 2070 तक संचालित करने की अनुमति मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इस विस्तार से होने वाला उत्सर्जन देश के कुल 33 वर्षों के कार्बन उत्सर्जन के बराबर हो सकता है। परंपरागत मालिकों ने भी इस परियोजना और इसके पवित्र इंडिजिनस रॉक आर्ट पर संभावित प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बीपी के पूर्व कार्यकारी और अब क्लाइमेट काउंसलर ग्रेग बॉन का कहना है कि ये फैसला बहुत ही निराशाजनक है। वहीं सेंट्रल विक्टोरिया के जाजा वुरुंग लोग स्थायी संधि प्रक्रिया शुरू करने वाले पहले पारंपरिक मालिक समूह बन गए हैं। जाजा वुरुंग लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह जाजा वुरुंग क्लैंस अबोरिजिनल कोऑपरेशन ने राज्य की स्वतंत्र संधि प्राधिकरण संस्था ट्रीटी अथॉरिटी में पंजीकरण करा लिया है। अब ये संगठन समुदाय से परामर्श करेगा ताकि संधि के प्रमुख मुद्दों को तय किया जा सके और एक प्रतिनिधि मंडल गठित किया जा सके जो राज्य सरकार के साथ बातचीत करेगा। इसके बाद राज्य सरकार को औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांगों को खारिज कर दिया है, जबकि ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस अपने अपने प्रतिबंधों की चेतावनी दे चुके हैं। अल्बनीजी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने निर्णय स्वयं लेता है। इस बीच लेबर सांसद एड ह्यूसिक ने गाजा में सहायता बढ़ाने, इजरायली राजदूत को तलब करने और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी अस्पतालों, स्कूलों और नागरिकों पर हमलों में शामिल लोगों पर कार्यवाही की अपील की है। गाजा में अधिकारियों का कहना है कि इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में विवादित अमेरिकी इजरायली सहायता केंद्र की ओर भाग रहे कम से कम 3 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 46 घायल हुए हैं। 3 महीने की नाकेबंदी के बाद गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं कहती हैं कि ये संगठन मानवीय सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत की पूर्वी रेलवे ने ब्लॉगर और यूट्यूबर समुदाय से अपील की है कि वे स्टेशनों की विस्तृत फोटो या वीडियो ना बनाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म की तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है और हालिया गतिविधियों के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये चेतावनी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद आती है, जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। पूर्वी रेलवे ने कहा है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर स्टेशनों के वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सभी मंडलों में ये पाबंदी पहले से लागू है, लेकिन कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे। रेलवे ने दोहराया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सभी से सहयोग की अपील की गई है। इसी के साथ 28 मई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं। Thank you.